माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदनंदन व्रज जन रंजन यशोदनंदन व्रज जन रंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे Thank you. Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Jaya Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram, Krishna Balaram, Jaya Krishna Balaram. Jaya Radha, Shyam Sundar Radha, Shyam Sundar Radhe. Gauranitai Jaya, Gauranitai Jaya, Gauranitai Jaya, Gauranitai. Jaya Jaya Prabhupada, Prabhupada, Prabhupada. Jaya Prabhupada, गाए गौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल नेताय गौर हरि बोल जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य His Divine Grace, Abhay Charanaravinda Bhakti Vedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai, Anant Koti Vaishnava Vrinda Ki Jai, Shri Shri Krishna Balaram Ki Jai, Shri Shri Radha Shyam Sundar Ki Jai, Shri Shri Gaur Nitai Ki Jai, Nitai Gaur Premanande, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, Samaveta Bhakta Vrinda Ki Jai, श्री श्री गुरु गौरांग की जय ओम ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम् वंदेहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादां सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। तो आप सबका स्वागत है। आज हम भौतिक प्रकृति के तीन गुण इस चार दिवसीय सत्र के अंतिम दिन अब हम इस विषय पर चर्चा करने वाले हैं कि हम गुणातीत अवस्था की प्राप्ति कैसे करें। गुणातीत अवस्था अर्थात दिव्य अवस्था, जिसमें हम तीन भौतिक गुण सत्व रजस और तमस इनसे हम परे हो जाते हैं। तो कल इन तीन गुणों के लक्षणों के बारे में हमने कुछ सुना और आज से अब ये चर्चा करने वाले हैं कि सत्व गुण का अनुशीलन करना हमारे लिए आवश्यक है और इसके दो फायदे हैं। पहला फायदा तो ये है कि अब जीते जी हमें लाभ होगा। क्यों लाभ होगा? प्रत्येक व्यक्ति जीवन में सुख संतोष संतुष्टि समृद्धि आदि की अपेक्षा करता है। इसके अतिरिक्त कठिन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए दृढ़ प्रतिज्ञता आदि सात्विकता के लक्षण हैं। अर्थात जिन चीजों को हम चाहते हैं जैसे सुख समृद्धि शांति दृढ़ता, ये सत्वगुण के लक्षण हैं। प्रकृति के तीन गुणों का ज्ञान एवं उनके मानवीय जीवन पर प्रभाव की जानकारी मनुष्य को सत्वगुण विकास करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसके फलस्वरूप मनुष्य प्रसन्नता एवं तुष्टि को तुरंत यहां और अभी प्राप्त कर सकता है। दूसरे शब्दों में, क्योंकि सत्व गुण तीनों गुणों में से श्रेष्ठ है, क्योंकि सत्व गुण हमें सुख
शांति, समृद्धि, ज्ञान आदि प्रदान करने में सक्षम है, इसलिए हमें सत्व गुण का अनुशीलन करने का प्रयास करना चाहिए। तो सत्व गुण का अनुशीलन करने से लाभ हमें यहां भी होगा, हमें अगले जन्म तक प्रतीक्षा करने की आवश्यकता नहीं है, इसी जीवन में हमें इसका फल मिलेगा। जो सात्विक जीवन का अनुशीलन करते हैं शीघ्र ही उनके ऐसे जीवन का फल मिल जाता है। परंतु सत्वगुण में स्थित होने का एक और गंभीर एवं उच्चतर लाभ है, और यह है कि सत्वगुण एक मंच है जहां से कि मनुष्य सुगमता से शुद्ध आध्यात्मिक जीवन अपना सकता है जो कि तीनों गुणों से परे है। दूसरे शब्दों में, न केवल सत्व गुण से हमें इस जीवन में लाभ होगा, शांति, ज्ञान आदि प्राप्त होगा, परंतु सत्व गुण में स्थित होने से हम आध्यात्मिक जीवन की प्राप्ति कर सकते हैं। हम तीन गुणों के परे हो सकते हैं, गुणातीत अवस्था की प्राप्ति हम कर सकते हैं, जो वास्तव में हमारा लक्ष्य है। तो सत्वगुण में रहकर आध्यात्मिक अवस्था की प्राप्ति सुलभ ही की जा सकती है। अब ये बताइए कि यदि हमें हवाई जहाज में बैठना है तो हम कहां जाएंगे? हवाई अड्डे में जाएंगे, हमारे घर के छत पे तो नहीं जाएंगे। ऐसा नहीं विचार करेंगे कि हम घर के छत पे चले जाएं तो वहां से हवाई जहाज आएगी, हम बस पकड़ लेंगे और आसमान में चल पड़ेंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो पाता। ठीक उसी तरह से यद्यपि भक्ति किसी भी अवस्था में की जा सकती है और की जानी चाहिए, फिर भी तमोगुण और रजोगुण में स्थित होकर भक्ति को टिकाऊ रखना बहुत मुश्किल है। हम सुन चुके हैं कि पालन के लिए सत्वगुण चाहिए, तो भक्ति प्रारंभ करने के पश्चात भक्ति को हमारे जीवन में बनाए रखने के लिए हमें सत्वगुण की आवश्यकता है, ताकि हम भक्ति में स्थिरता से रहें और अच्छी तरह से प्रगति भी कर पाएं। यदि हम सत्वगुण में स्थित नहीं होंगे तो फिर नियमित रूप से स्थिरता से भक्ति में प्रगति करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जिस प्रकार से हवाई जहाज को में चढ़ने के लिए हमें हवाई अड्डे पर जाना है, ठीक उसी प्रकार से भगवान की भक्ति में स्थिर रहने के लिए, आध्यात्मिक आसमान में उड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? सत्वगुण की आवश्यकता है। यदि हम कहें कि हम रजगुण में सत्वगुण में स्थित होकर हम भक्ति में स्थिर हो जाएंगे तो यह संभव नहीं है। मानो ऐसे है कि हम घर के छत पे ऊपर जाके हम हवाई जहाज पकड़ना चाहते हैं, यह संभव नहीं है। वैसे हम हर रोज सुबह भागवत क्लास के पहले क्या प्रार्थना करते हैं? नैष्ठिक की भक्ति कैसे मिल सकती है? मंगलाचरण में कौन सा श्लोक हम कहते हैं? नष्ट प्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर भवति नैष्ठिकी। तो ये नैष्ठिकी भक्ति है, निष्ठावान भक्ति की अवस्था कैसे प्राप्त हो सकती है? नित्य भागवत का श्रवण करके, परंतु उस अवस्था में भी सारे अनर्थ धुल नहीं जाते हैं, नष्ट नहीं हो जाते हैं, प्रायेषु प्राय नष्ट हो जाते हैं, लेकिन फिर भी थोड़े बहुत रह जाते हैं। तो यदि हमने अपने आप को सत्वगुण में स्थित करके हमारी साधना नहीं की तो साधना को हम बनाए नहीं रख पाएंगे, साधना टूट जाएगी हमारी, छूट जाएगी। अच्छा ये बताइए, ये चार नियमों का पालन हम करते हैं ना, कौन से हैं चार नियम? मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, अवैध संग नहीं करना और मादक द्रव्यों का सेवन नहीं करना, इनका पालन हम क्यों करते हैं? हाँ जी, सत्व गुण में अपने आप को स्थित रखने के लिए, क्योंकि ये चार वर्जित कार्य जो हैं, मांसाहार इत्यादि, ये रजगुण और तमगुण के कार्य हैं। यदि हम इनको करेंगे तो हमारा पतन सत्व गुण से हो जाएगा और भक्ति से भी पतन हो जाएगा। तो पतन से अपने आप को बचाए रखने के लिए हम ये चार नियमों का पालन करते हैं। ये चार नियम भक्ति के अंग नहीं हैं। मांस नहीं खाना ये भक्ति नहीं है, अवैध संग नहीं करना भक्ति नहीं है, जुआ नहीं खेलना भक्ति नहीं है, शराब नहीं पीना भक्ति नहीं है। परंतु शराब पीने से, मांस खाने से, अवैध संग करने से भक्ति नष्ट हो जाएगी, क्योंकि हम रजगुण और तमगुण में पतित हो जाएंगे। गोलोक वृंदावन में चार नियमों की समस्या है क्या? कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वहां तो सभी शुद्ध भक्त हैं, तो वहां ऐसी कोई समस्या नहीं है। इसलिए हम सत्व गुण में अपने आप को स्थित करके भक्ति के कार्यों को करते हैं। सत्व गुण के कौन से कार्य हैं जो हम करते हैं ताकि ये सब हमारे भक्ति में लाभदायक हों, बताइए? सात्विक कार्य कौन से करते हैं हम? हाँ नहीं, महामंत्र का जब सात्विक कार्य नहीं है, ये भक्ति का कार्य है। प्रातःकाल सुबह जल्दी जल्दी उठना, अपने शरीर को स्वच्छ रखना, मन को साफ रखना, अच्छी वाणी बोलना, ऐसे कितने चीजें हैं जो सात्विक कार्य हैं। तो हम सात्विक कार्यों को करते हैं, सात्विक वातावरण में रहते हैं, ताकि हम भक्ति के साधन को, साधनों को अच्छी तरह से अपना पाएं। तो ये है सत्वगुण में स्थित होने का सबसे बड़ा लाभ, कि सत्वगुण में स्थित होकर हम तीन गुणों के परे आ सकते हैं। रजगुण और तमगुण में रह के गुणातीत अवस्था की प्राप्ति करना संभव नहीं है। ठीक है, आप समझ पाए ना इस बात को? आध्यात्मिक ज्ञान का अभाव बंधन का कारण है। हम बंधे हुए इसलिए हैं कि हम अपने आप को नहीं जानते हैं। आध्यात्मिक ज्ञान का विकास सत्व गुण का अनिवार्य लक्षण है। इसीलिए मनुष्य के लिए इन तीन गुणों का ज्ञान तथा अपने आध्यात्मिक स्वरूप का ज्ञान, जो कि प्रकृति से भिन्न है, को विकास करना अति आवश्यक है। हमारे समस्याओं का मूल कारण क्या है? अज्ञान। अज्ञान को कैसे दूर किया जा सकता है? ज्ञान प्राप्त करके। और ज्ञान प्राप्त करना ये कौन से गुण में होता है? सत्वगुण में। तो शुरुआत होती है सत्वगुण के अनुशीलन से। हाँ, इसमें भक्ति जोड़नी चाहिए। भक्ति नहीं जोड़ेंगे तो हम सत्वगुण में सदैव स्थित नहीं रह पाएंगे, पतन हो जाएगा सत्वगुण से। जैसे अनेक ऐसे भी लोग हैं जो हवाई अड्डे में जाते हैं लेकिन जहाज में चढ़ते नहीं हैं, है ना? ऐसे लोग कौन है? वो लोग कर्मचारी हैं जो हवाई अड्डे में काम करते हैं। हवाई अड्डे में तो रोज जाते हैं, फिर क्या करते हैं? शाम के समय वापस लौट के आते हैं। उसी प्रकार से जो व्यक्ति केवल सत्वगुण में रहता है परंतु भक्ति नहीं करता, फिर से उसका पतन रजगुण और तमगुण में हो जाएगा, निश्चित है। सत्वगुण में स्थित रहने के लिए भी हमें भक्ति की सहायता चाहिए, और फिर भक्ति सतोगुण में भक्ति करते करते हम सतोगुण के भी परे आ सकते हैं। ठीक है, ठीक है ना ये बात। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के तीन प्रश्नों का उत्तर देते हैं, क्योंकि अर्जुन पूछना चाहते हैं उस व्यक्ति के बारे में जो गुणातीत अवस्था में है। भगवद गीता के 14वें अध्याय के 21वें श्लोक में अर्जुन प्रश्न करते हैं। उनका पहला प्रश्न यह है, तीन गुणों से परे या गुणातीत व्यक्ति के क्या लक्षण हैं? वैसे संक्षेप में हम उत्तर बता रहे हैं कि 22वें श्लोक में भगवान कृष्ण जवाब देते हैं कि गुणों के प्रति समभाव रखने वाला व्यक्ति जो आकांक्षा एवं ईर्ष्या से मुक्त है, यह व्यक्ति गुणातीत कहला सकता है। तो हमारे दैनिक जीवन में कितनी महत्वपूर्ण बात है, तरह तरह के भौतिक चीजों की कामना रखना, अन्यों से ईर्ष्या करना, ये हमारे भक्ति के लिए हानिकारक है। तो ये अर्जुन का पहला प्रश्न था। अब दूसरा प्रश्न, उसका अर्थात गुणातीत व्यक्ति का व्यवहार किस प्रकार का होता है? तो 23वें से 22वां नहीं है, ये 23वें से 25वें श्लोक में भगवान कृष्ण उत्तर देते हैं। ऐसा व्यक्ति सुख और दुख में समभाव रहता है, सब ओर समता एवं समानता का दर्शन करता है, मान और अपमान, यश अपयश, प्रशंसा अप्रशंसा आदि में समान भाव रखता है, मित्रों एवं वैरियों को समदृष्टि से देखता है, सभी भौतिक गतिविधियों से वैराग्य की भावना मन में रखता है। तो ये बाह्य लक्षण है, तो अन्य लोग भी देख सकते हैं। इसके पहले जो वर्णन था वो उसके आंतरिक भावना की बात है। और तीसरा प्रश्न क्या होगा अर्जुन का? उसके लक्षण तो पूछ लिए, व्यवहार कैसा होना है वो पूछ लिए, अब तीसरा गुणातीत अवस्था की प्राप्ति कैसे की जा सकती है, ये तो सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। वह इस अवस्था को प्राप्त कैसे करता है? फिर भगवान उत्तर देते हैं, अव्यभिचारिणी, ठीक है, इसको वी को काट दीजिए, अव्यभिचारिणी भक्ति। व्यभिचारिणी और अव्यभिचारिणी भक्ति, व्यभिचार का मतलब है कि हम श्रद्धावान नहीं रहते हैं। अव्यभिचारिणी भक्ति में हम केवल श्री कृष्ण के शरण में रहते हैं और किसी के पास नहीं जाते। सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, एकम शरणम, ये है अव्यभिचारिणी भक्ति, केवल भगवान श्री कृष्ण का आश्रय लेना। जब हम ऐसे करेंगे तब आसानी से तीन गुणों से परे हो जाएंगे। और इसके लिए बहुत प्रसिद्ध श्लोक है, कौन सा है वो? बहुत अच्छा, माम चयो व्यभिचारिण, हम इस श्लोक का पाठ करते हैं। ये 26वां श्लोक है 14वें अध्याय में। माम चयो व्यभिचारिण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीत्येतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। माम च यह, यह मतलब जो व्यक्ति, माम च मतलब मेरे प्रति, अव्यभिचारेण मतलब ऐसे श्रद्धावान भाव से, भक्ति योगेन सेवते भक्ति योग के द्वारा मेरी सेवा करता है, सगुणान समतीत्ययितान इन तीन गुणों के वो परे हो जाता है। ब्रह्म भूयाय कल्पते और ब्रह्म स्तर पे या आध्यात्मिक स्तर पे स्थित हो जाता है। तो इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि केवल शुद्ध भक्ति करने से हम तीन गुणों के परे जा सकते हैं। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्माद्यनावृतम आनुकूलेन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। यह है रूप गोस्वामी पाद की परिभाषा शुद्ध भक्ति की। तो ऐसे भक्ति करने से तीन गुणों के परे हम अवश्य जा पाएंगे। सातवें अध्याय में भी भगवान कृष्ण और एक महत्वपूर्ण श्लोक कहते हैं, देवी नहीं दैवी होना चाहिए ये, दैवी हेशा गुणमयी मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते माया मेतां तरंतिते। प्रकृति के तीन गुणों वाली इस मेरी दैवी शक्ति को पार पाना कठिन है, किंतु जो मेरे शरणागत हो जाते हैं वे सरलता से इसे पार कर जाते हैं। तो भगवान कहते हैं कि ये जो प्रकृति है ये मेरी प्रकृति है, और कैसी है ये, दैवी, ये दिव्य है। ये प्रकृति दिव्य क्यों है, क्योंकि भगवान की है, किसी और की तो नहीं है, भगवान की प्रकृति है, इसलिए ये दैवी प्रकृति कहलाती है। मम माया, और इसे माया भी कहते हैं, दुरत्यया अर्थात इसे पार करना प्राय असंभव है, परंतु माम एव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरंतिते। जो व्यक्ति मेरे शरण में आता है वो इस माया या इस भवसागर को आसानी से पार कर सकता है। तो तीन गुणों से मुक्त होना ये बहुत मुश्किल है, परंतु जो व्यक्ति भगवान कृष्ण के शरण में जाता है, श्रील प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं कि फिर भगवान अपनी माया को आदेश देते हैं कि छोड़ दो इस भक्त को, जो कड़े हैं हाथ में सोने को हो या चांदी के हो लोहे के हो, खोल दो इसे, मुक्त कर दो। फिर माया को करना पड़ता है, माया मुक्त कर देती है, क्योंकि माया भी भगवान की सेविका है। अब कल आपको याद होगा अनेक वर्गों की बात हमने की थी और तीन गुणों के दृष्टिकोण से विश्लेषण किया था, जैसे खाद्य पदार्थ, थोड़े पदार्थ सत्व गुण में होते हैं, थोड़े रजस में रजोगुण में होते हैं और थोड़े तमोगुण में होते हैं। लेकिन आज हम ये चर्चा करने वाले हैं कि एक चौथा भी वर्ग है और वो क्या है, दिव्य वर्ग, जो कि तीनों गुणों से परे है। इसका संबंध भक्ति या भौतिक प्रकृति से नहीं है। तो ये है प्रसाद। कई बार लोग कहते हैं कि आप हिंसा करते हैं। आप कहते हैं कि केवल मांसाहार करना हिंसा है, लेकिन शाकाहार में भी तो हिंसा होती है। तो हम कहते हैं हम शाकाहारी नहीं है, हम प्रसादाहारी हैं, है ना। यज्ञ शिष्टाशन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषय भुंजते ते त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्। भगवान कृष्ण कहते हैं कि जो यज्ञ के रूप में मुझे भोजन अर्पण करके यज्ञ का अवशिष्ट जो है मेरा प्रसाद भोजन के रूप में स्वीकार करता है वो कर्म बंधन से मुक्त हो जाता है, और जो ऐसा नहीं करते वो बंध के रह जाते हैं। तो भक्त प्रसाद का सेवन करते हैं, फिर भी किस तरह का भोजन हमें भगवान को अर्पण करना चाहिए? इन तीनों वर्गों में से कौन सा वर्ग? सात्विक आहार जो है भगवान को अर्पण करना चाहिए। क्यों ऐसे? बाकी दो वर्गों के पदार्थ हम क्यों नहीं अर्पण कर सकते भगवान को? हाँ जी, हाँ, सरल उत्तर ये है कि भगवान नहीं चाहते हैं। भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहम भक्त्युपहृतम अश्नामि प्रयतात्मनः। तो भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, अंडम मटनम वो सब नहीं कहते हैं। वो ऐसा कहते तो हम करते, लेकिन भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम, तो हमें सात्विक आहार ही भगवान को अर्पण करना है, फिर वो दिव्य हो जाता है। स्थान, स्थानों की चर्चा की थी हमने। जो जंगल में स्थान है वो सत्व गुण में है, जो शहरों में है वो रजोगुण में, और जहां शराब आदि का सेवन किया जाता है वो तमोगुणी स्थान है, लेकिन जिस स्थान में हम बैठे हैं दिव्य है। जहां भगवान का मंदिर है वो दिव्य स्थान है। उसी प्रकार से तीन गुणों में सक्रियता, अलग अलग कार्यों के बारे में हमने कल देखा था। तो चौथे प्रकार का कार्य है वो क्या है? दिव्य कार्य, जो भगवान के संतुष्टि के लिए किया जाता है, तो ये दिव्य है। संकीर्तन कौन से गुण में है? सत्व में, रजस में, तमस में, किस में है? दिव्य है, तीनों में भी नहीं है स्थित, तीनों से परे है। अर्चना, रजगुण में अर्चना पूजा, तमोगुण में, रजगुण में, सत्वगुण में, लेकिन भगवान कृष्ण की सेवा पूजा दिव्य है। और जब यहां हम अर्चना पूजा की बात कर रहे हैं, कल हम सात्विक उपासना की बात कर रहे थे, तो सात्विक उपासना क्या है? देवी देवताओं की उपासना, ये भी तुलनात्मक दृष्टि से। परंतु देवी देवताओं की पूजा का विश्लेषण यदि गहराई में किया जाए तो हम देखेंगे कि इसके भीतर भी तामसिक उपासना है, राजसिक है, सात्विक है। जैसे काली की उपासना लोग करते हैं शराब से, मांस से, तो ये तामसिक उपासना हुई, हालांकि ये देवी देवताओं की पूजा है जो यहां पे सात्विक मानी गई है, परंतु इस वर्ग के भीतर भी ऐसे तामसिक उपासना है। और राजसिक उपासना क्या है? जब हम जाके कोई भौतिक लाभ या वरदान मांगते हैं भगवान से या देवताओं से, भगवान से नहीं देवताओं से, कांक्षंतः कर्मणाम सिद्धिम, कि बहुत ही जल्दी हमें कर्मों का फल मिलता है, यजन्ते इह देवताः, इसलिए देवताओं के पास लोग जाते हैं ताकि जल्दी से फल मिल जाए। एक व्यक्ति हमसे मिले थे, बोलते हैं हम सारे गणेश मंदिरों में गए हैं लेकिन फलाना फलाना दो तीन मंदिर हमने चुन रखे हैं, क्योंकि यहां गणेश जी बड़े पावरफुल हैं। तुमने कहा क्यों भाई, सब जगह वही तो गणेश है ना? नहीं नहीं, यहां जाते हैं ना तो इच्छाएं बहुत जल्दी पूर्ण हो जाती है, तो इसलिए मैं वहां जाता हूं। तो ये रजगुणी उपासना है। और सात्विक उपासना वो है जहां व्यक्ति देवताओं की भी उपासना करता है परंतु कुछ ऐसे भौतिक मांगता नहीं है उनसे। लेकिन इससे भी परे है भगवान की सेवा, भगवान कृष्ण की। लेकिन आगे चल के हम देखने वाले हैं भगवान श्री कृष्ण की सेवा में भी वर्ग होंगे, वो आगे देखेंगे थोड़ी देर बाद, ठीक है। और मृत्यु के बाद जो हमारी गति होंगी उसके बारे में भी चर्चा हुई थी। नीचे बाएं तरफ कौन सी गति है, किन के लिए है? जो तमोगुण में स्थित हैं उनके लिए गति है नरक लोक, जो रजगुण में स्थित हैं उनके लिए गति है मनुष्य लोक, और जो सत्वगुण में स्थित होते हैं उनके लिए गति है देवलोक। परंतु क्या, जो भगवान कृष्ण के भक्त हैं उनकी गति क्या है? वैकुंठ जगत, गोलोक वृंदावन, जो कि इन तीनों स्थानों से गतियों से परे है। सुख, सात्विक सुख, तामसिक राजसिक सुख और तामसिक सुख, इसके बारे में चर्चा हम कल कर रहे थे। सात्विक सुख ज्ञान आदि से प्राप्त होता है, व्यक्ति आगे देवलोक में चले जाता है। राजसिक सुख में कड़वापन बहुत जल्दी आ जाता है, और तामसिक सुख में तो पहले भी, बीच में भी और अंत में भी पागलपन ही पागलपन है। परंतु एक और प्रकार का सुख है जो तीनों गुणों से परे है, दिव्य सुख, भगवान की सेवा का सुख। कृष्ण भक्ति करने से जो सुख मिलता है वो दिव्य है। इसका संबंध तीन गुणों से नहीं है। और चेतना की अवस्थाएं, सतगुण में जागृति की अवस्था, रजगुण में स्वप्न की अवस्था और तमोगुण में सुषुप्ति या गहरी नींद की अवस्था, तो ये तीनों ही स्तर जो हैं ये भौतिक प्रकृति के अंतर्गत आती हैं। परंतु भगवान कृष्ण की शुद्ध भक्ति में जब व्यक्ति मग्न रहता है, समाधि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तो ये दिव्य चेतना है, दिव्य स्तर है। इसका मतलब ये नहीं है कि भगवान का शुद्ध भक्त सोता नहीं है, स्वप्न नहीं देखता है, जागता नहीं है, ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि इन तीनों अवस्थाओं में भी उसकी चेतना शुद्ध ही रहती है, ठीक है। और ये है, बताइए चित्र देख के, इस चित्र में क्या बताया जा रहा है? चार वर्ण, सबसे ऊपर बाएं तरफ कौन है? ब्राह्मण। फिर दाहिने तरफ क्षत्रिय, उनके नीचे नहीं शूद्र है, और उनके बाएं तरफ वैश्य। तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, गुण कर्म विभागशः। भगवान ने गीता में कहा है कि गुणों और कर्मों के आधार पर इनका विभाजन किया गया है। लेकिन जो भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं वो कौन से वर्ण में होते हैं? वैष्णव होते हैं। तो वो किसी भी वर्ण में नहीं होते, बल्कि ये एक अपराध माना जाता है कि यदि हम कहें अरे ये तो एक शूद्र वैष्णव है, ये इस जाति का वैष्णव है, ये इस तरह से सोचना वैष्णवों के प्रति ऐसी भौतिक दृष्टि रखना ये एक अपराध माना जाता है। वैष्णव वैष्णव होता है, वैष्णव तीन गुणों के परे होता है, क्योंकि वो शरणागत हो चुका होता है भगवान श्री कृष्ण के चरणों में। तो चार वर्ण एक तरफ हैं और वैष्णव दूसरी तरफ। तो इसलिए जो सच्चा वैष्णव होता है वो ब्राह्मण से भी श्रेष्ठ माना जाता है। अब आई बात ज्ञान की। ज्ञान भी सात्विक राजसिक और तामसिक हो सकता है। जो तमोगुण के अंतर्गत ज्ञान है वो कैसा है? मूर्खतापूर्ण ज्ञान, सांसारिक ज्ञान, और ऐसे ज्ञान में व्यक्ति को आहार निद्रा भय मैथुन के सुख की प्राप्ति के अलावा और कुछ चेतना नहीं रहती है। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा दुनिया को देखता है वैसे ही ये तामसिक व्यक्ति की दृष्टि रहती है। बस कैसे अच्छा भोजन मिले, कैसे थोड़ा सुख मिले, बस इतना ही विचार करना, उसका ज्ञान वहीं तक सीमित है। कैसे इंद्रिय तृप्ति प्राप्त की जाए, यही विचार होता है उसके मन में। तो जो ऐसे इंद्रिय तृप्ति प्राप्त करने के लिए ज्ञान अर्जन करता है व्यक्ति, ये तामसिक ज्ञान कहलाता है। फिर रजोगुणी ज्ञान, द्वैत आधारित ज्ञान, विशेष करके द्वंद्वों में रह के जो ज्ञान प्राप्त किया जाता है, आधुनिक विज्ञान आदि, शरीर का ज्ञान, सृष्टि का ज्ञान, ये सारे मनमाने ढंग से मानसिक चिंतन के द्वारा उत्पन्न होने वाले जितने भी ज्ञान के विषय हैं वो सब राजसिक ज्ञान कहलाते हैं। और फिर सतोगुण में ज्ञान, परम ज्ञान। परम ज्ञान अर्थात ऐसे व्यक्ति को धार्मिक ज्ञान अवश्य थोड़ा बहुत होता है, साथ साथ इतना पता होता है कि हर चीज में कुछ आध्यात्मिकता है, भगवान है, इतना कुछ ज्ञान होता है, परंतु गहराई में शायद ज्ञान न हो। और गुणातीत या दिव्य ज्ञान वो है जो कृष्ण पर आधारित होता है, कृष्ण से संबंधित होता है। अब आपके मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ होगा, क्या प्रश्न है वो? सात्विक ज्ञान और दिव्य ज्ञान में अंतर क्या है? यह प्रश्न हुआ आपके मन में? तो इसका उत्तर है, सत्वगुण में ज्ञान तथा दिव्य ज्ञान में भेद क्या है? सत्वगुण में व्यक्ति पवित्र एवं धार्मिक हो जाता है एवं सर्वत्र एक उच्चतर आध्यात्मिक शक्ति का बोध प्राप्त करता है या अनुभव करता है। सात्विक व्यक्ति साधारण धार्मिक ज्ञान प्राप्त कर सकता है। तो ये रही बात सात्विक ज्ञान की। अब रही बात दिव्य ज्ञान की। दिव्य अवस्था जो शुद्ध सत्व कहलाता है, में व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण के साथ दिव्य ज्ञान में एक सीधी या निजी प्रेमपूर्ण संबंध का निर्माण करता है। व्यक्ति केवल भौतिक पुण्य से न जुड़कर श्री कृष्ण को वास्तविक सेवा प्रेषित करता है। तो सत्वगुण में आध्यात्मिक ज्ञान का स्पर्श अवश्य होता है, परंतु भगवान के साथ एक निजी प्रेम का संबंध नहीं होता है, वो तो केवल भक्तों के लिए होता है। जैसे हम सब जाते हैं मंदिर में रोज, हम राधा श्याम सुंदर, कृष्ण बलराम, गौर निताई का दर्शन करते हैं, तो एक व्यक्तिगत संबंध होता है हृदय में अर्चा विग्रहों के प्रति। हम इन्हें केवल प्रतिमा नहीं समझते हैं, हम जानते हैं कि ये साक्षात भगवान हैं, और हर एक भक्त अपने अपने भावना के अनुसार भगवान से प्रार्थना करता है या उनकी स्तुति करता है। तो भक्ति में भक्त का एक व्यक्तिगत निजी प्रेम का संबंध होता है, इस संबंध के अनुसार भक्त भगवान की सेवा करता है, परंतु सात्विक अवस्था में ऐसी सेवा भावना विकसित नहीं होती है। आध्यात्मिक ज्ञान का स्पर्श मात्र होता है, एक धार्मिकता रहती है, परंतु भक्ति नहीं रहती है। ठीक है, अब देखिए भगवान श्री कृष्ण किस अवस्था में स्थित हैं, कौन से सत्वगुण में हैं, रजोगुण में हैं या तमोगुण में हैं? भगवान श्री कृष्ण सदैव दिव्य अवस्था में स्थित होते हैं, परंतु तामसिक और राजसिक लोगों की बात तो दूर है, सात्विक लोग भी भगवान को नहीं जान सकते। हम आध्यात्मिक ज्ञान या सात्विक ज्ञान और दिव्य ज्ञान की बात कर रहे थे ना, तो देखिए सत्वगुण में स्थित होने वाले देवतागण भी कभी कभी भगवान को पहचान नहीं सकते हैं। बाएं तरफ ऊपर आप देख रहे हैं ब्रह्मा जी को, ब्रह्मा जी तो आदि देव हैं, सबसे पहले ब्राह्मण हैं, ब्रह्मांड के ब्रह्म विमोहन लीला के दौरान वो कैसे भ्रमित हो गए थे, श्री कृष्ण को ठीक से नहीं समझ पाए थे, फिर अंत में आके उन्होंने क्षमा याचना की श्री कृष्ण से। उसी तरह से इंद्रदेव ने बड़ा अपराध किया श्री कृष्ण के चरणों में, मूसलधार वर्षा बरसाई वृंदावन में, और श्री कृष्ण को सारे ब्रजवासियों की रक्षा करना पड़ा। तो फिर इंद्रदेव आए सुरभि माता के साथ में और श्री कृष्ण से क्षमा याचना की। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि देवता गण भी मुझे कभी कभी पहचान नहीं सकते, ये सत्वगुण में स्थित है, सत्वगुण में स्थित होने के बाद भी कभी कभी व्यक्ति भगवान को ठीक से पहचान नहीं सकता है। तो फिर रजोगुण की बात तो दूर है, जैसे बीच वाले चित्र में नीचे आप कंस को देख रहे हैं जो असुर था, और उसके ऊपर वाले चित्र में कौन है, भीमसेन किनका वध कर रहे हैं, जरासंध का। तो ऐसे रजोगुणी व्यक्ति नहीं समझ पाए, कंस कहां समझ पाए कृष्ण को, जरासंध भी कहां समझ पाए कृष्ण को। तो फिर जो तमोगुण में होते हैं जैसे रावण आदि, वो भगवान को कैसे जान सकते हैं? इसलिए तामसिक ज्ञान, राजसिक ज्ञान और सात्विक ज्ञान के परे है दिव्य ज्ञान। दिव्य ज्ञान में व्यक्ति भगवान श्री कृष्ण को तत्वतः जान लेता है और जानने के बाद सेवा करता है। बहुनाम जन्मनामंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते वासुदेवः सर्वम् इति स महात्मा सुदुर्लभः। भगवान कपिलदेव के द्वारा अपनी माता देवहूति को दी गई शिक्षा का एक प्रमुख विषय है तीन गुणों में भक्ति और निर्गुण भक्ति। तो कपिलदेव विश्लेषण करने वाले हैं इस विषय का, एक अध्याय है भक्ति, और भक्ति का विश्लेषण करते करते कपिल देव अपनी माता देवहूति से कहते हैं कि वैसे तो भक्ति शुद्ध है, भक्ति दिव्य है, परंतु भक्ति करने वाले की चेतना कैसी है ये देखकर भक्ति का भी विभाजन किया जाता है। यदि व्यक्ति तामसिक है जो भक्ति कर रहा है, तो उस भक्ति को भी तामसिक कहते हैं। हालांकि भक्ति तो शुद्ध ही रहती है, परंतु करने वाला तामसिक होता है, इसलिए उस भक्ति को तामसिक कहते हैं। ठीक उसी प्रकार से यदि कोई राजसिक व्यक्ति भक्ति करता है भगवान कृष्ण की, तो उस भक्ति को राजसिक भक्ति कहते हैं, और कोई सात्विक व्यक्ति भगवान कृष्ण की भक्ति करता है उसे सात्विक भक्ति कहते हैं, और यदि कोई शुद्ध भक्ति कर रहा है तो फिर वो निर्गुण भक्ति कर रहा है। तो आइए अब हम 6-7 श्लोकों को देखते हैं, श्लोकों का पाठ करते हैं जो कपिल देव अपनी माता देवहूति को सुनाते हैं। बहुत महत्वपूर्ण उपदेश है ये। भक्ति तमोगुण में अभिसंधाय यो हिंसा दंभम मात्सर्यमेव वा संरम्भे भिन्न दृक्भावम् मयि कुर्यात् स तामसः। ईर्ष्यालु अहंकारी हिंसक तथा क्रोधी और पृथक्तावादी व्यक्ति द्वारा की गई भक्ति तमोगुण प्रधान मानी जाती है। दूसरे शब्दों में जब कोई ईर्ष्यालु व्यक्ति, अहंकारी व्यक्ति, हिंसक व्यक्ति, क्रोधी जो व्यक्ति होता है, ये जब भगवान कृष्ण की भक्ति करते हैं तो ऐसे भक्ति को तामसिक भक्ति कहते हैं। भक्ति अपनी जगह में दिव्य है, परंतु ये करने वाला, भक्ति करने वाला तामसिक है, इसलिए इसे तामसिक भक्ति कहते हैं। यहां एक शब्द का प्रयोग किया गया है, भिन्न दृक्। दृक् अर्थात दृष्टि, भिन्न तो आप समझ रहे हैं, तो जिसकी दृष्टि भिन्न है। किनसे भिन्न है? भगवान की दृष्टि से। भगवान की एक दृष्टि है, जब भक्ति करने वाले की दृष्टि कुछ भिन्न होती है तो उसे भिन्न दृक् कहते हैं, इसलिए वो मिश्र भक्ति कहलाती है, शुद्ध भक्ति नहीं है। प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में कहते हैं इस श्लोक के कि जब कोई व्यक्ति बहुत घमंडी होता है और अपने आप के बारे में बहुत कुछ सोचता है, अन्यों को नीच निम्न श्रेणी का समझता है और दूसरों को अपने भक्ति के द्वारा हिंसा आदि पहुंचाना चाहता है, तो ऐसा व्यक्ति तामसिक भक्त कहलाता है। अभी दुनिया में चल रहा है ना ऐसा कुछ, जो लोग अपने भगवान की सेवा के नाम पे अनेकों की हत्या करते हैं, भले वो मासूम हो, बच्चे हो, बम बम लगा के उड़ा देते हैं एक साथ अनेकों को, ये तामसिक भावना है। ये उनके हृदय में हिंसात्मक भावना है, क्रोध बहुत है, दंभ बहुत है, गर्व बहुत है कि मेरा धर्म सर्वश्रेष्ठ है, मेरे धर्म से सर्वश्रेष्ठ कोई नहीं है। आप समझ रहे हैं हम क्या बात कर रहे हैं? हमारे धर्म से श्रेष्ठ कोई नहीं है, और अन्यों से बहुत ईर्ष्या करते हैं, ये हमारे धर्म के नहीं है तो इनकी हत्या करनी चाहिए। तो भिन्न दृक्, भगवान की दृष्टि ऐसी नहीं है। ये धर्म बनाए किसने हैं? मनुष्य के लिए बनाए हैं, क्योंकि लोगों की धारणाएं, लोगों की मनोवृत्तियां अलग अलग रहती हैं, परंतु हैं भगवान एक ही। तो जो व्यक्ति तमोगुण का अधीन होता है उसकी भक्ति शुद्ध नहीं होती। तो चाहे व्यक्ति तमगुण में हो, रजगुण में हो या सतगुण में हो, उसकी भक्ति अशुद्ध रहेगी। इसे मिश्र भक्ति कहते हैं, क्योंकि भिन्न दृक, उसकी दृष्टि भिन्न है भगवान से। अब भक्ति रजगुण में, विषयान नहीं विषयान होना चाहिए, ठीक है। विषयान अभिसंधाय यश ऐश्वर्यम एव वा अर्चदावर्चयेद्यो माम् पृथक् भावः स राजसः। मंदिर में एक पृथक्तावादी द्वारा भौतिक भोग, यश तथा ऐश्वर्य के प्रयोजन से की जाने वाली विग्रह पूजा रजोगुणी भक्ति है। तमोगुणी भक्ति की चर्चा करने के बाद अब कपिल देव रजोगुणी भक्ति का वर्णन कर रहे हैं। तो रजोगुणी भक्ति कौन करता है? जो स्वयं रजोगुणी है। और उसके लक्षण क्या होते हैं? वो क्यों करता है भगवान की भक्ति? वो भौतिक भोग चाहता है, यश चाहता है, ऐश्वर्य चाहता है, प्रतिष्ठा चाहता है। तो ऐसे व्यक्ति जब भक्ति करता है भगवान कृष्ण की, तो इस भक्ति को राजसिक भक्ति कहते हैं। यहां पर एक शब्द का प्रयोग है, पृथक भाव, भिन्न दृक और पृथक भाव एक ही बात है। पिछले श्लोक में भिन्न दृक शब्द का प्रयोग किया गया था और यहां पे पृथक भाव है। पृथक मतलब अलग, यह भी मिश्र भक्ति है, क्योंकि भक्ति करने वाले की भावना शुद्ध नहीं है, भगवान से मिलती जुलती नहीं है। भगवान तो चाहते हैं माम एकम शरणम व्रज अन्याभिलाषिता शून्यम, ऐसा भगवान चाहते हैं, परंतु इस व्यक्ति के मन में भिन्न भिन्न कामनाएं हैं, इसलिए ऐसे व्यक्ति की भक्ति को राजसिक भक्ति कहते हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बताते हैं कि विशेष करके तामसिक भक्ति के संबंध में, कि यदि कोई वैष्णव भी हो परंतु उसका व्यवहार ठीक नहीं हो, घमंडी है, क्रोधी है, हिंसक है, तो दूर से ही उसको सम्मान देना चाहिए, परंतु संग नहीं करना चाहिए उसका। ऐसे विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर टीका में लिखते हैं। प्रभुपाद जी दो तीन तात्पर्यों में इसी बात को दोहराते हैं, बार बार दोहराते हैं। तो वैष्णव का अपराध नहीं करना चाहिए, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि बिना विवेक के हम संग करते रहें। केवल उन भक्तों का संग करना चाहिए जो वास्तव में भक्ति में बहुत गंभीर हों, जो निष्काम हों, जो हृदय से सही भावना से भक्ति करना चाहते हैं, नहीं तो गलत लोगों का संग करने से हमारी भक्ति भी दूषित हो जाएगी। तो ये है पृथक भाव, अलग भावना राजसिक भक्ति की। अब आई बात सात्विक भक्ति की, भक्ति सतोगुण में। कर्म निर्हारम उद्देश्य परस्मिन् वा तदर्पणम् यदि यजेद्यष्टव्यमिति वा पृथग् भावः वसात्विकः। जब भक्त भगवान की पूजा करता है और अपने कर्मों की त्रुटि से मुक्त होने के लिए अपने कर्म फलों को अर्पित करता है तो उसकी भक्ति सात्विक होती है। तो सात्विक भक्ति कौन करता है? जो स्वयं सात्विक है। उसकी भावना क्या रहती है, क्या किस हेतु से वो भक्ति करता है भगवान कृष्ण की? कर्म निर्हारम उद्देश्य, उसका उद्देश्य है कि मेरे कर्मों के फल से मैं मुक्त हो जाऊं। कभी कभी कर्म करते करते हम त्रुटियां कर बैठते हैं तो गलत कर्म करने के कारण उनका फल भी हमें मिलेगा, जिससे दुख मिल सकता है। तो सात्विक व्यक्ति सोचता है कि कर्मों के फल से मुझे मुक्त होना चाहिए। यत करोषि यद अश्नासि यद जुहोषि तदासि यत यत तपस्यसि कौन्तेय तदश तत्त कुरुष्व मदर्पणम्। तो वो कर्मों के फलों को भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अर्पण करता है, क्योंकि वो चाहता है कि मैं इन कर्म फलों से मुक्त हो जाऊं। लेकिन देखिए, यहां पर भी कपिल देव उसी शब्द का प्रयोग करते हैं। कौन सा शब्द है वो? पृथक भावम। दूसरे शब्दों में सात्विक भक्ति भी शुद्ध भक्ति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें भी भक्त कुछ चाहता है भगवान से। क्या चाहता है? कर्म फलों से मुक्ति चाहता है, दुख से राहत चाहता है, क्योंकि उसे पता है कि कर्म फल आएंगे तो दुख आएगा। मैं दुखों से मुक्त होना चाहता हूं, इसलिए मैं भक्ति करता हूं। इसलिए ऐसे व्यक्ति की भक्ति भी शुद्ध नहीं मानी जाती है। इसलिए यहां भी पृथक भाव कहा गया है। जो भगवान कृष्ण का शुद्ध भक्त होता है वह कुछ भौतिक कुछ नहीं चाहता भगवान से, केवल भगवान की प्रेम में ही सेवा करना चाहता है भगवान को। तो ऐसे तामसिक भक्ति, राजसिक भक्ति और सात्विक भक्ति का वर्णन करने के बाद अब निर्गुण भक्ति की परिभाषा देंगे कपिल देव। बहुत सुंदर श्लोक हैं ये दोनों। मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतेरवेच्छिन्ना यथा गंगाम्भसों बुधो लक्षणं भक्तियोगस्य निर्गुणस्य ह्युदाहृतम् अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे मद्गुण श्रुति मात्रेण मयि सर्व गुहाशये मनोगतेरवेच्छिन्ना मेरे समाप्त करने के बाद आप शुरू कीजिए, ठीक है? यथा गंगां भसो बुधो लक्षणं लक्षणं भक्ति योगस्य सात्विक सात्विक बने लक्षणं भक्ति योगस्य निर्गुणस्य हृताहृतम् अहैतुक्य व्यवहिता या भक्ति पुरुषोत्तमे जब मनुष्य का मन प्रत्येक व्यक्ति के हृदय के भीतर वास करने वाले भगवान के दिव्य नाम तथा गुणों के श्रवण की ओर तुरंत आकृष्ट हो जाता है तो निर्गुण भक्ति का प्राकट्य होता है। जिस प्रकार गंगा का पानी स्वभावतः समुद्र की ओर बहता है उसी प्रकार ऐसा भक्तिमय आह्लाद बिना रोक टोक के परमेश्वर या भगवान श्री कृष्ण की ओर प्रवाहित होता है। तो ये है शुद्ध भक्ति, जहां भक्त श्री कृष्ण के पास जाके कोई भौतिक चीज चाहता नहीं है, मांगता नहीं है। आमतौर पे लोग मंदिरों में जाते हैं तो अपना शॉपिंग लिस्ट लेकर जाते हैं, परंतु शुद्ध भक्ति के पथ में चलने वाले भक्तों को ऐसी आदत नहीं है। वो समझते हैं कि जीवन में कोई कठिनाई आए भी तो ये भी भगवान की कृपा है, और उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति स्वाभाविक आकर्षण या प्रेम है। मद गुण, क्योंकि कपिल देव तो स्वयं भगवान है ना, इसलिए मद कह रहे हैं। मेरा मद गुण श्रुति मात्रेण, मेरे गुणगान श्रवण करने मात्र से मैं जो कि सर्व गुहाशय, मैं हरेक प्राणी के हृदय में विराजमान हूं, मुझ भगवान का गुणगान सुनने मात्र से मनोगतिर अविच्छिन्ना, जब व्यक्ति का मन बिना रोक टोक के बिना रुकावट के स्वाभाविक रूप से खींच लिया जाता है भगवान के चरण कमलों की ओर, जैसे कि गंगा जी का जल सीधे समुद्र की ओर बहते रहता है, बीच में कोई रुकावटें आती भी हैं तो जल रुक नहीं जाता, यूं तो घूम के वो समुद्र पहुंच ही जाता है। ठीक उसी प्रकार से जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं किसी भी परिस्थिति में अपने मन को भगवान से हटाते नहीं है, क्योंकि आकर्षण ही इस प्रकार का है। आखिर कृष्ण है ना सर्व आकर्षक, शब्द का अर्थ ही यह है। लक्षणम भक्ति योगस्य निर्गुणस्य ही उदाहरितम, तो ये लक्षण है भक्ति योग का। किस तरह से भक्त, किस तरह के भक्ति योग का? निर्गुणस्य, ये न तो तामसिक है न राजसिक है न सात्विक है, ये निर्गुण भक्ति है जो तीनों भक्त गुणों से परे है। अहैतुकि अव्यवहिता, बिना कोई भौतिक हेतु से की जाती है। अव्यवहिता, बिना कोई रुकावट से की जाती है। गर्मियों की छुट्टी नहीं, रविवार की छुट्टी नहीं, 2400 घंटे 365 दिन साल में लगातार चलती रहती है भक्ति। किन के प्रति होनी चाहिए? गणेश जी के प्रति, दुर्गा जी के प्रति, कि किन के प्रति? नहीं, पुरुषोत्तमे, जो भगवान श्री कृष्ण है। तो यहां भक्ति की परिभाषा स्पष्ट रूप से कपिलदेव भगवान देते हैं। तो ये है निर्गुण भक्ति, ये हमारे जीवन का लक्ष्य है। जैसे वृंदावन के निवासियों का, ब्रजवासियों का मन ऐसे ही सदैव मग्न रहा करता था श्री कृष्ण में। यद्यपि वो बहुत प्रयास करते थे, गोपियां खास करके, जब कृष्ण चले गए वृंदावन से, कि चलो हम कृष्ण को भूल जाएं, कृष्ण से हमें मिला क्या है, केवल झूठे झूठे कसम खा के चले गए, हम लौटेंगे लौटेंगे कल आएंगे, लेकिन कल तो क्या, इतने महीने बीत गए और कृष्ण आए नहीं। तो ऐसे व्यक्ति को हमारे हृदय में स्थान देने से क्या मतलब, हमें भूल जाना चाहिए। तो गोपियां ध्यान में बैठती थीं कृष्ण को भुलाने के लिए। साधारण व्यक्ति ध्यान में बैठते हैं कृष्ण को याद करने के लिए, और बड़े कठिनाई से एक आध बार कभी याद कर लेते हैं। संसार का प्रवाह इतना तीव्र होता है कि हरि नाम लेते लेते भी तरह तरह के विचार मन में आते हैं, लेकिन गोपियों के साथ बात बिल्कुल उल्टी थी। कृष्ण हृदय से नहीं जा रहे थे, वो भुलाना चाहते थे लेकिन नहीं भूल पा रहे थे। तो ये है उत्तमा भक्ति, तो ये हमारे लिए अनुसरणीय है। इस तरह की भक्ति को प्राप्त करना हमारे जीवन का ध्येय है। जब मंदिर में जाते हैं तो भगवान का श्री विग्रह देखते देखते हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए, हरि नाम का जप करते करते हमें यही प्रार्थना करनी चाहिए कि इस प्रकार की भक्ति भी हमें प्राप्त हो जाए। और आगे भी कपिल देव भगवान कहते हैं निर्गुण भक्ति के और लक्षण, ये भी सुंदर श्लोक है। सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः सालोक्य साष्टि सामीप्य सारूप्यैकत्वमप्युत दीयमानं न गृह्णन्ति विना मत्सेवनं जनाः। शुद्ध भक्त सालोक्य सार्ष्टि सामीप्य सारूप्य या एकत्व में से किसी प्रकार का मोक्ष स्वीकार नहीं करते, भले ही ये भगवान द्वारा क्यों न दिए जा रहे हों। यदि इनको स्वीकार करने से सेवा का अवसर प्राप्त न हो तो विना मत सेवनम भगवान कहते हैं। तो ये पांच प्रकार की मुक्तियां हैं। सालोक्य अर्थात उस लोक में आध्यात्मिक जगत में रहना जहां भगवान निवास करते हैं। सार्ष्टि भगवान जैसे ऐश्वर्य को प्राप्त करना। देखिए जब राजमहल में राजा का कोई नौकर रहता है तो उसका पता क्या होता है, जब उसके रिश्तेदार चिट्ठी लिखना चाहते हैं उसे तो पता क्या होता है, राजमहल। राजमहल में रहता है, जो राजा के लिए भोजन बनता है जो बच जाता है वो खाता है, तो ऐश्वर्यशाली जीवन जीता है, बड़े ठाठ से ऐश्वर्य से जीता है। जो ऐश्वर्य राजा का है वो सेवक का भी है, वही भोजन खाते हैं, वही स्थान में रहते हैं, बल्कि राजा के कपड़े भी वो दे देते हैं, चलो ले लो, कपड़े भी वैसे ही पहन लेता है। तो ठीक उसी प्रकार से भगवान के धाम में रहने वाले भक्तों को भी भगवान अपने ही ऐश्वर्य प्रदान कर देते हैं। इसे सारष्टि कहते हैं, सामीप्य, भगवान का सानिध्य प्राप्त करना, बहुत समीप होना भगवान के, उनके उनका पार्षद बनना। सारूप्य, भगवान की तरह ही दिखना, विशेष करके वैकुंठ लोकों में जो चतुर्भुज नारायण के साथ विष्णु भक्त रहते हैं, दिखने में बिल्कुल भगवान नारायण की तरह है। अंतर कैसे हम कह सकते हैं? कौस्तुभ मणि और श्रीवत्स, केवल भगवान नारायण हैं जो कौस्तुभ मणि धारण करते हैं और उनके वक्षस्थल में श्रीवत्स का चिन्ह है। और एकत्व, एकत्व अर्थात निराकार ब्रह्म में लीन हो जाना। ये पांचवे प्रकार की मुक्ति तो भक्त चाहते ही नहीं हैं, परंतु पहले चार प्रकार की जो मुक्तियां हैं इनको भी नहीं चाहते हैं यदि भगवान की सेवा का अवसर यहां न मिले तो। तो देखिए, भगवान कृष्ण के भक्त मुक्ति भी नहीं चाहते हैं। न धनम न जनम न सुंदरीम कविताम वा जगदीश कामये ममी जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतात् भक्तिर अहेतुकी त्वयी। इसे अहेतुकी भक्ति कहते हैं। और फिर कपिल देव गुणातीत अवस्था का वर्णन करते हैं। सैव भक्ति योगाख्य आत्यंतिक उदाहृतः येनाति व्रज त्रिगुणम् मद्भावायोपपद्यते। जैसा कि मैं बता चुका हूं, भक्ति का उच्च पद प्राप्त करके मनुष्य प्रकृति के तीन गुणों के प्रभाव को लांघ सकता है और दिव्य पद पर स्थित हो सकता है, जिस तरह भगवान है। तो कपिल देव बताते हैं कि यदि हम ऐसे भक्ति कर लें कि जैसे अब हमने कहा है निर्गुण भक्ति, तो हम तीन गुणों के परे निश्चित ही हो सकते हैं। भगवान कपिल देव की शिक्षा कि शुद्ध भक्ति कैसे की जानी चाहिए, फिर इसके बाद में जो श्लोक है उन्होंने संक्षेप में बताया है कि ऐसे निर्गुण अवस्था की प्राप्ति के लिए हमें क्या करना चाहिए। पहली बात, निस्वार्थ भाव से अपने निहित कार्यों को करना चाहिए भगवान की सेवा में। दूसरी बात, अधिक हिंसा के बिना अपनी भक्ति के कार्यों को करना चाहिए। अभी आपके मन में एक प्रश्न आया होगा, क्या प्रश्न है? अधिक हिंसा के बिना मतलब थोड़ी हिंसा कर सकते हैं? तो प्रभुपाद जी व्याख्या करते हैं, हाँ कर सकते हैं, बल्कि उसको किए बिना हम रह नहीं सकते। क्यों? जीवो जीवस्य जीवनम, हम जो आहार ग्रहण करते हैं तो हिंसा करनी ही पड़ती है ना। कितने पेड़ पौधों की हत्या होती है, जब हम सांस भी लेते हैं तो कितने कीटाणु मर जाते हैं, पानी उबालने लगते हैं चूल्हे के ऊपर कितने कीटाणु मर जाते हैं, घर में झाड़ू लगा रहे होते हैं कितने कीटाणु मर जाते हैं। तो भगवान ने सृष्टि की रचना की ही ऐसे है कि बिना कोई हिंसा किए हुए व्यक्ति नहीं जी सकता। इसलिए कई एक धर्म के लोग हैं जो ऐसे अपने नाक और मुख के ऊपर कपड़ा लगाते हैं ताकि वो जब सांस लेते हैं तो कोई कीटाणु अंदर ना जाए, मरे नहीं। लेकिन कब तक हम ऐसे कर पाएंगे? हम चल तो रहे हैं, चलते चलते न जाने कितने कीटाणु मर रहे हैं। यहां अक्सर इतने चींटियां आती हैं सड़क में, तो हम चलते हैं, प्रयास तो करते हैं कि कोई मरे नहीं हमारे पैरों के नीचे, लेकिन अनायास मर भी जाते हैं। तो कपिल देव के ये कहने का तात्पर्य ये है कि कम से कम हिंसा और शाकाहारी भोजन में कम से कम हिंसा है, और वो भी फिर हम भगवान को अर्पण करते हैं। इसका तात्पर्य यह भी है कि जब आवश्यकता पड़े भक्त को, यदि कृष्ण की सेवा के लिए हिंसा करना पड़े तो हिचकिचाना नहीं चाहिए। अर्जुन हिचकिचा रहे थे, श्री कृष्ण ने क्या कहा, नहीं तुम्हें करना चाहिए। पहले दिन हम चर्चा कर रहे थे ना स्वभाव, दूसरे दिन स्वभाव की बात कर रहे थे, तो तीसरी बात जो कपिल देव कहते हैं, भगवान की अर्चा विग्रह की सेवा करना, भले हम पुजारी न हो परंतु हम भगवान के विग्रह के सामने आके दर्शन तो कर सकते हैं, पत्रम पुष्पम फलम तोयम कुछ अर्पण तो कर सकते हैं, उनके सामने बैठ के कीर्तन तो कर सकते हैं, उनके सामने आके उनकी स्तुति कर सकते हैं। अगली बात, प्रत्येक प्राणी को आध्यात्मिक जीव के रूप में देखना, यह समझना कि ये सारे भगवान के अंश हैं, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिने शुनि चैव श्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः, समदर्शी होना। लेकिन इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी चेतावनी देते हैं, वो कहते हैं कि हर प्राणी को समभाव से देखने का मतलब ये नहीं है कि हम किसी शेर को जाके आलिंगन करें कि इसके हृदय में भी आत्मा है, ये भी जीव है, हम भी जीव हैं। दूसरे शब्दों में व्यवहारिक जीवन में जो हमें सावधानी रखनी चाहिए, जो मर्यादा का पालन करना चाहिए वो अवश्य करें, परंतु मन ही मन में जान लें कि वास्तव में हम सब भगवान श्री कृष्ण के अंश हैं, हम सब आत्मा हैं। अगली बात, केवल ऐसे लोगों का संग करना है जिन्होंने कृष्ण भावनामृत को अपने जीवन में विकसित किया है, अर्थात जितने उन्नत भक्तों का संग हम करें, आगे बढ़े हुए भक्तों का संग करेंगे हम, उतना लाभ हमें होगा। इसलिए अच्छे अच्छे भक्तों का के संग में हमें रह के भक्ति करनी चाहिए। फिर कपिल देव जी कहते हैं बड़े धैर्य से भक्ति करनी चाहिए। हम 2 साल से भक्ति कर रहे हैं, अभी तक शुद्ध भक्त क्यों नहीं हुए, ये भक्ति काम की चीज नहीं है, छोड़ दो, नहीं ऐसा नहीं। कई जन्म लग जाते हैं, उत्साही होना चाहिए भक्ति में, उत्साहान निश्चयात धैर्यात, परंतु धीरज भी रखना चाहिए। जब भगवान कृपा करेंगे तब शुद्ध भक्त हम बन जाएंगे, हमारी ओर से हमें पूरा पूरा प्रयास करते रहना है। गुरुजनों एवं आचार्यों को पूरा सम्मान देना चाहिए। फिर कपिल देव आगे कहते हैं सदैव आध्यात्मिक विषयों का श्रवण करना चाहिए। एक महत्वपूर्ण बात आपसे कहेंगे हम, कोई भक्त होते हैं जो बहुत जल्दी प्रगति करते हैं भक्ति में, और थोड़े भक्त होते हैं उतने जल्दी नहीं कर पाते। अनेक कारण हो सकते हैं इसके, परंतु एक महत्वपूर्ण कारण अवश्य ये है कि जो व्यक्ति नियमित रूप से श्रद्धा पूर्वक ध्यान पूर्वक कृष्ण कथा का श्रवण करता है वो तेजी से प्रगति करेगा, और जो श्रवण नहीं करेगा या जो श्रवण पर्याप्त मात्रा में नहीं करेगा उसकी प्रगति कम होगी। बहुत सीधी बात है, परंतु यह सत्य है। श्रवण और कीर्तन ये दो हमारे भक्ति के बुनियाद हैं, स्तंभ हैं हमारे। अपना समय भगन ने भगवन नाम के कीर्तन में बिताना, तो व नहीं है यहां पे, तो अपना समय भगवन नाम के कीर्तन में बिताना, ये तो हम युग धर्म है। जप और कीर्तन दोनों ही हमें बड़े भक्ति भाव से करने चाहिए। दीनों पर दया करना, श्रील प्रभुपाद जी तात्पर्य में कहते हैं कि दीन का मतलब ये नहीं है कि जो केवल भौतिक दृष्टि से गरीब है। प्रभुपाद जी समझाते हैं कि जिसके पास कृष्ण नहीं है वो दीन है, चाहे वो भौतिक दृष्टि से अमीर हो या गरीब। यदि किसी गरीब व्यक्ति के पास कृष्ण हो, वो कृष्ण का भक्त है, तो वो वास्तव में बहुत धनी है। और किसी धनी व्यक्ति के पास कृष्ण नहीं है, वो कृष्ण भक्त नहीं है, तो वो वास्तव में दरिद्र है। तो दीनों पर दया करने का तात्पर्य ये है कि जो कृष्ण भक्त नहीं है उनको जाके हम कुछ प्रचार करें, श्री कृष्ण के बारे में कुछ सुनाएं, प्रसाद उनको दें, भक्ति मिलाने का प्रयास करें। फिर आगे कपिल देव कहते हैं, समान स्तर के लोगों से मित्रता स्थापित करना, स्वजाति, आचार्य ने टीका लिखी है स्वजाति। स्वजाति मतलब जिनका सोच विचार हमारे जैसा है, ऐसे लोगों का संग करना चाहिए। जो केवल कृष्ण भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके जीवन का एकमात्र उद्देश्य यही है, ऐसे लोगों का संग हमारे लिए उचित है। इसे सजातीय कहते हैं। नारद जी जब ध्रुव महाराज को उपदेश देते हैं तो वो बताते हैं कि हम जब किसी ऐसे व्यक्ति को मिलते हैं जो हमसे श्रेष्ठ है, तो हमें हर्षित होना चाहिए और सम्मान अर्पण करना चाहिए। जब हम बराबर के किसी व्यक्ति से मिलते हैं, उसके साथ मित्रता का संबंध स्थापित करना चाहिए। और जब हमसे कोई कनिष्ठ व्यक्ति हो या निम्न श्रेणी का हो, तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर हमें करुणा करनी चाहिए, प्रेम देना चाहिए। प्रभुपाद जी तात्पर्य में उस श्लोक के लिखते हैं, ये चौथे स्कंद में है शायद, वो कहते हैं कि भौतिकतावादी लोग जो होते हैं वो ऐसा नहीं करते। जब किसी बहुत श्रेष्ठ व्यक्ति को देखते हैं तो उनके मन में हर्ष नहीं होता, ईर्ष्या होने लगती है, उनकी निंदा करते हैं। जब बराबर के लोगों से मिलते हैं तो मित्रता स्थापित करने के बजाय अपना बड़प्पन करते हैं, मैंने देखो ऐसे किया, मैंने ये हासिल किया, मैंने वो हासिल किया। और जब अपने से कोई कनिष्ठ व्यक्ति होता है उससे मिलते हैं तो करुणा दिखाने के बजाय हम क्रोधित हो जाते हैं, उसे आदेश देने लगते हैं। तो देखिए श्रीमद् भागवत में भी हमारे दैनिक व्यवहार के लिए कितने अच्छे अच्छे उपदेश हैं। तो कपिल देव जी भी ऐसी बात को यहां कह रहे हैं। फिर आगे वो कहते हैं, मन तथा इंद्रियों को नियमों के द्वारा नियंत्रित करना चाहिए, जैसे चार नियमों का पालन इत्यादि। हमारा स्वभाव और व्यवहार कैसे होना चाहिए? सरल और निष्कपट, अभक्तों के संग का त्याग करना चाहिए। चैतन्य महाप्रभु ने कहा है, असत संग त्याग वैष्णव आचार। तो असत्संग के त्याग से हम पहचान सकते हैं कि कौन वैष्णव है और कौन नहीं है। और अंत में वो कहते हैं, हमें नम्र रहना चाहिए। तो ऐसे कपिल देव प्रार्थना हमें उपदेश देते हैं। तो ऐसे यदि हम भगवान कृष्ण की भक्ति करते रहें तो निश्चित ही शीघ्र ही हम गुणातीत अवस्था को प्राप्त करेंगे। वही आकर्षण हमारे मन में उत्पन्न होगा जिसका वर्णन कपिल देव जी ने इन श्लोकों में किया है, ये हमारी जीवन की परिपूर्णता है, जीवन की चरम सिद्धि है। तो यहां वृंदावन धाम में विशेष करके कार्तिक मास में आए हैं, तो श्री वृंदावन धाम से कृष्ण बलराम राधा श्याम सुंदर गौर निताय और श्री प्रभुपाद जी के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए कि हमें भी ऐसे निर्गुण और शुद्ध भक्ति की प्राप्ति हो। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और एक बात मैं आपसे कहना चाहूंगा जो हमारे विषय से थोड़ा हटकर है, परंतु हम ऐसी एक बात सुने थे थोड़े दिन पहले जो हमें पता नहीं था पहले, यमुना जी के बारे में। ये केवल यमुना जी के प्रदूषण की बात नहीं है, हमें आश्चर्य हुआ ये सुनकर कि बरसात के मौसम के 4 महीनों के अतिरिक्त जो भी यहां यमुना जी में बहता है वो यमुना जी का जल नहीं है, क्योंकि हरियाणा में ही यमुना जी को रोक देते हैं और उसको दूसरी ओर भेज देते हैं, और 95% जल तो हरियाणा में चले जाता है, 5% जल जो है वो भी इधर उधर रहता है, और उसके बाद 400 किलोमीटर केवल सूखा ही सूखा रहता है। उसके बाद जितने भी कीचड़ आदि सब रहता है जो शहरों से आता है, बड़े बड़े पाइपों से वहां चले आता है, और फिर ये सारा यहां यमुना जी कह के नाम से बहता है, लेकिन ये है ही नहीं यमुना जी, यमुना जी का जल रुका है। इसलिए थोड़े भक्त हैं, बरसाना से भी आए हैं, वो ये अभियान करना चाह रहे हैं कि कैसे हम यमुना जी को फिर से ब्रज में ले आए। तो इसलिए जहां तक हो सके हमें अपना योगदान देना चाहिए, वहां उन्होंने स्टॉल लगाया है देखिए, तो अब आप यहां आए ही हैं, वहां जाके आप भी जो अनेक चीजें हैं जो आप कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं वहां भी आप पूछ सकते हैं, उन्हें कोई दस्तखत वगैरह भी चाहिए, और वहां दिल्ली में कोई पहचान हो या हरियाणा में पहचान हो, और ऐसे लोगों को जागृत करना है कि हमें वृंदावन में यमुना जी चाहिए, केवल कीचड़ आदि नहीं चाहिए, असली जो यमुना जी का जल है जो हरियाणा में दूर किया जाता है, दूसरी दिशा में किया जाता है, वो यहां आना चाहिए। ये बहुत बड़ा विषय है, कौन किसने सोचा हुआ होगा कि यहां जो बहता है वो यमुना नहीं है। और कभी कभी तो यमुना जी बरसात में पानी बढ़ जाता है तो इतना पानी छोड़ देते हैं कि यहां वृंदावन आदि में बाढ़ हो जाता है। तो खैर, एक दो शब्द इसके बारे में हम कह रहे थे। तो आज के विषय के बारे में जो भी प्रश्न यदि हो आपके, तो और 5-10 मिनट है, आप अवश्य पूछ सकते हैं। हाँ, माइक आप देंगे वहां पीछे। हाँ, पूछिए प्रश्न। आखिरी बात क्या है?
हरे कृष्ण।
हरे कृष्ण।
आप बताया गया दिन पर दया करना, लेकिन उत्तम भक्त बोलते मैं सबसे छोटा हूं और सब बड़ा और सब श्रेष्ठ है, तो ये मध्यम भक्त का लक्षण है, उत्तम भक्त का लक्षण?
हाँ, ये सही है, क्योंकि प्रचार के लिए तो व्यक्ति को मध्यम अवस्था में स्थित होना है, फिर भी जो शुद्ध भक्त होते हैं केवल अपने उपस्थिति से, अपने मुख से कृष्ण नाम निकालने से दूसरों को कृष्ण भक्त बना देते हैं। चैतन्य महाप्रभु से जब श्रीखंड के भक्तों ने प्रश्न किया था कि वैष्णव कौन है, क्योंकि महाप्रभु ने उनसे कहा था वैष्णवों का संग करना, तो महाप्रभु ने कहा था जिसके नाम से एक बार भी कृष्ण का नाम निकले वो वैष्णव है। तो अगले साल वो भक्त फिर से आए जगन्नाथपुरी। दोबारा उन्होंने महाप्रभु से पूछा कि हम गृहस्थ हैं, हमारा कर्तव्य क्या होना चाहिए। पुनः चैतन्य महाप्रभु ने कहा, वैष्णवों की सेवा कीजिए, वैष्णवों का संग कीजिए। फिर उन्होंने प्रश्न किया, वैष्णव कौन है? तो महाप्रभु ने उत्तर दिया, जो सदैव कृष्ण नाम लेता है वो वैष्णव है। फिर तीसरे साल वो भक्त फिर से आए, फिर से वही प्रश्न पूछा और महाप्रभु ने कहा, वैष्णवों की सेवा करना। फिर उन्होंने पूछा, वैष्णव कौन है? फिर उन्होंने कहा, जिसको देखने मात्र से ही व्यक्ति के मुख से कृष्ण नाम निकले वो कृष्ण भक्त है। तो शुद्ध भक्त भले प्रचार करने न भी जाए, केवल ऐसे व्यक्ति के सानिध्य से ही प्रचार हो जाता है और वैसे उसके हृदय में करुणा की भावना तो रहती है, इसलिए तो फिर वो प्रचार करने हेतु जाते हैं। प्रभुपाद जी गए थे, उनकी क्या आवश्यकता थी जाने की? 70 वर्ष के आयु में वो भी वृंदावन में आराम से रह रहे थे, अपना भजन साधन करते हुए यहीं पर रह जाते। परंतु उनके गुरु के आदेश अनुसार वो गए, हृदय में करुणा थी, प्रचार करने के लिए चले गए। ठीक है, और कोई प्रश्न? हाँ जी।
हरी बोल। जब यमुना महारानी का ध्यान करना हो तब अपना मन कहाँ लेकर जाना चाहिए? अब तक तो वृंदावन में यमुना के किनारे यहीं पर मन लगाते थे हम लोग।
मतलब आपका प्रश्न है कि वृंदावन में रह के हम क्या ध्यान करें?
जैसे नहाते समय गंगा चाहे यमुना वेणी गोदावरी सरस्वती बोलते हैं ना, तो वृंदावन में यमुना के किनारे मन लगा लिया करते थे कि भाई यहाँ पे यमुना महारानी है। तो मन कहाँ लेकर जाना चाहिए हमें यमुना महारानी के दर्शनों के लिए?
अच्छा, ऐसे आप प्रश्न कर। यहाँ कृष्ण बलराम जी राधा श्याम सुंदर है ना, बस उनके चरणों में ले आइए अपने मन। हरे कृष्णा। हाँ जी।
हरे कृष्णा महाराज।
हरे कृष्णा
महाराज। आपने बोला कि जो तमोगुणी जो भक्ति है उसका स्वभाव है ईर्ष्यालु, अहंकारी, हिंसक। तो जो भक्ति होती है तो वो जो तमोगुणी भक्त है वो हिंसक कैसे होता है? जो आप बता रहे हो कि जो चारों तरफ चल रहा है तो वो क्या भक्ति है? भक्ति तो जैसे सुना कि वो सिर्फ कृष्ण की होती है, तो ये भक्ति कैसे होती है?
कृष्ण मतलब परम सत्य भगवान। कृष्ण मतलब भगवान कृष्ण के जितने भी अवतार हैं वो भी कृष्ण ही हैं। तो कोई यदि परम सत्य भगवान को पूज रहा हो, परंतु ऐसे भगवान की सेवा करते करते उसका स्वभाव कुछ ऐसा है, ईर्ष्यालु है, वो हिंसक है, दंभी है, तो उसके चरित्र में, उसके व्यक्तित्व में ये त्रुटियां हैं, ये दोष हैं, इसलिए उस भक्ति को तामसिक भक्ति कहते हैं। जैसे हम बता रहे थे, भक्ति तो तामसिक, राजसिक और सात्विक नहीं है, भक्ति तो शुद्ध है। परंतु भक्ति करने वाला अभी तक शुद्ध हुआ नहीं है, उसकी भावना ठीक नहीं है, वो सही भावना से भक्ति नहीं कर रहा है, इसलिए उसकी भक्ति को तामसिक, राजसिक या सात्विक कहते हैं।
तो वो अगर कृष्ण के किसी और रूप में भी सेवा कर रहा है वो भी भक्ति है?
कृष्ण के अवतार हैं, कोई प्रभु रामचंद्र के कर रहे हैं, कोई नरसिंह देव के कर रहे हैं, ये कोई परम सत्य हो। परम सत्य तो एक ही है ना, भगवान तो एक है, दो नहीं है।
थैंक यू।
तो उनकी सेवा वो कर रहे हो इस भाव से तो वो तामसिक भक्ति कहलाती है। हाँ जी।
हरे कृष्णा, प्रभु जी अपने कर्म फलों को भगवान को अर्पित करना, यह जरा स्पष्ट करके आप एक्सप्लेन कीजिए। हरे कृष्णा।
कर्म फलों को अर्पण करना ये सात्विक कार्य है, लेकिन भक्ति में कर्म के फलों को अर्पण नहीं करते हैं, जो कर्म करते हैं वही अर्पित होते हैं भगवान को। आप समझ रहे हैं अंतर? सत्व गुण में कर्मों के फल अर्पण किए जाते हैं और भक्ति में कर्म के कर्म ही अर्पित किए जाते हैं। जैसे हम जब जप करते हैं तो ये भी एक प्रकार का कार्य है ना, तो हम ऐसा नहीं करते कि जप का फल भगवान को अर्पण करें, नहीं, जप ही भगवान को अर्पण कर रहे हैं, तो वो कार्य ही भक्ति है। परंतु सात्विक अवस्था में हम कोई कार्य करते हैं और फिर जो फल मिलता है उसको हम अर्पित करते हैं भगवान के चरणों में। हाँ जी, यहाँ किसी का प्रश्न था, माइक वहां दीजिएगा।
महाराज, मेरा तो अपना प्रश्न है, लेकिन एक महत्वपूर्ण प्रश्न था यमुना के बारे में। मेरा कर्म जीवन और शिक्षा सब सिविल इंजीनियरिंग में चला है, इसलिए मैं कहता हूँ कि यमुना का बहुत अच्छा सलूशन संभव है। यहाँ सब भक्त लोग हैं, सब सुने तो कुछ काम में आएगा, सबका चाक पड़ने से। आप जैसे कहे कि बरसात में बाढ़ हो जाता है, अब इसका उपाय यही है, किसी का पानी कटौती करके तो आप ले नहीं सकते हैं। आप हस्तिनी कुंड के ऊपर जो एक प्रदेश है, जो पहले यूपी का भागा था उत्तरांचल, वहां से जहां से यमुना उत्पत्ति होती है, पहाड़ी पहाड़ है, और उसमें बहुत सा ऐसा जगह है जिसमें बैलेंसिंग रिजर्वर कर सकते, जैसे दामोदर वैली कॉर्पोरेशन में किया है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट, 1942 का इतिहास जिसको मालूम है।
ऐसा करते हैं प्रभु जी, ये हम उस स्टॉल में चर्चा करते हैं, क्योंकि इतने डिटेल में सबको शायद इतना समझ में नहीं आएगा, तो ये बातें हम वहां करेंगे।
जी ठीक है,
ठीक है,
ठीक है, आपको धन्यवाद।
हरे कृष्ण।
इसका संभव है इंजीनियरिंग सोल्यूशन, यही हम कर।
ठीक, तो आज के विषय के बारे में किसी को प्रश्न कीजिए।
हरे कृष्ण महाराज, बहुत धन्यवाद। अच्छा, बहुत इंस्पायरिंग क्लास दिया महाराज, सेमिनार था। मैं एक बात समझ नहीं पाया, जैसे इधर आप जो भक्ति का जो तीन है, जैसे तामसिक भक्ति है, राजसिक भक्ति है और सत्वगुण भक्ति है, और इसमें आप देखा है क्या जो निर्गुण स्तर का भक्ति होते हैं, जैसे आप उधर गोलोक वृंदावन भी है और वैकुंठ जगत भी है, वैकुंठ लोक भी है, तो जो लोग भक्ति करते हैं वो लोग का डिस्टिनेशन क्या होते हैं? कृष्ण लोक होते, जैसे गोलोक वृंदावन कृष्ण उधर ही रहते हैं, और वैकुंठ लोक में जैसे विष्णु फॉर्म में कृष्ण रहते हैं, तो जो भक्ति करते हैं उनका डेस्टिनेशन कहाँ होते हैं महाराज?
आपका प्रश्न है कि गति कहाँ होती है,
कहाँ होते है,
किसकी गति?
जो भक्ति करते हैं
उनके भाव के ऊपर निर्भर है, जैसे उनका भाव है वैसे ही गति प्राप्ति होगी। ठीक है, यदि किसी का वैकुंठ भाव है भक्ति में तो वैकुंठ की प्राप्ति होगी परिपूर्णता प्राप्त करने पर, यदि किसी का ब्रज भाव है वो वृंदावन जाएंगे। ठीक है।
हाँ जी। ब्रजभाव क्या और जैसे ब्रजभाव क्या और वैकुंठ भाव क्या होते हैं महाराज?
ब्रज भाव मतलब वृंदावन के निवासियों के पद चिन्हों में चलना, जिस तरह से ब्रजवासियों ने श्री कृष्ण की सेवा की थी उनके पद चिन्हों में चलना, उनका अनुसरण करना। ठीक है। हाँ माता जी।
महाराज,
कहाँ से? हाँ,
आखिर में कपिल देव के लास्ट में आपने बताया कि अभक्तों का संग नहीं करना चाहिए,
जहां तक हो सके, पूरी तरह से तो दूर नहीं रह सकते,
तो फिर इसे एक प्रचार के दृष्टिकोण से किस तरह से समझ सकते हम, जिसे भी हम प्रचार करते हैं वो भक्त है नहीं?
वो अलग बात है, लेकिन उनका कहने का तात्पर्य ये है कि ऐसे लोगों के संग में रमण नहीं करना चाहिए। जिन चीजों में वो लोग आनंद लेते हैं हमें उन चीजों में आनंद नहीं लेना चाहिए। प्रचार के लिए ठीक है मिल सकते हैं, फिर भी सावधानी से करना चाहिए। हाँ जी
महाराज, वैकुंठ में चतुर्भुज होते हैं और गोलोक में जो गोपी भाव होते हैं, तो कोई गोलोक में जाते हैं तो गोपी भाव से गोपी देह मिलेगा और वैकुंठ में चतुर्भुज मिलेगा, और जो वैकुंठ में पहले जाते हैं उनके की गोलोक में जा सकते हैं बाद में?
पहले हम तीन गुणों से परे हो जाएं, अभी तो केवल हम रजोगुण सत्वगुण से संघर्ष कर रहे हैं, इनके परे हो जाएं फिर ये बाकी प्रश्न अपने आप निकल जाएंगे। हाँ माता जी, आपका प्रश्न था इधर।
हरे कृष्ण।
हाँ एक मिनट, यहाँ प्रश्न चल रहा है जी। भगवान की गुणवत्ता। हाँ जी प्रश्न ये है कि दो दिन पहले ये बताया गया था कि शिव जी भगवान का प्रतिनिधित्व करते हुए बीज प्रदाता हैं सृष्टि के सृजन के समय, परंतु वो तमोगुण के गुणावतार भी हैं, तो सृष्टि के संहार के समय उनका कार्य होता है, फिर बीज प्रदाता कैसे हुए? शिव जी दोनों कार्य करते हैं, उनको दो प्रकार की भूमिकाएं, वैसे अनेक भूमिकाएं हैं शिव जी की। एक भूमिका उनकी ये है कि वो सबसे परम वैष्णव हैं, दूसरी भूमिका ये है कि वो तमोगुण के गुणावतार हैं, इसलिए वो सृष्टि के संहार के समय बहुत कार्य करते हैं, उनका तांडव नृत्य होता है। और तीसरा कार्य जो महत्वपूर्ण है, सृष्टि के सृजन के समय वो भगवान की सहायता करते हैं, उनका प्रतिनिधित्व करते हुए वो पिता बन जाते हैं। ठीक है,
हरे कृष्णा।
हाँ जी अंतिम प्रश्न। अंतिम
अपिचेत शुद्धराचारो भजते माम अनन्य भाग। भगवान ने कहा एक किस प्रकार की भक्ति होती है, किस प्रकार की मिश्र भक्ति? अपिचेत शुद्धराचारो भजते माम अनन्य भाग, साधुरे व समन्तव्य, उनको भी साधु मानना चाहिए, दुराचार करता है फिर भी भक्ति कर रहा है।
ये भक्ति होनी चाहिए अनन्य भाग, अनन्य भाग अर्थात अनन्य भक्ति, एकाग्र चित्त से अव्यभिचारिणी भक्ति। जब कोई व्यक्ति अकस्मात अनायास ऐसे कोई बुरा काम कर बैठता है, दुराचार कर बैठता है गलती से, लेकिन वो अपने भक्ति में स्थित रहता है, अटल रहता है अपनी भक्ति भावना से, ऐसे व्यक्ति को साधु मानना चाहिए। परंतु चेतावनी श्रील प्रभुपाद जी देते हैं कि हमें ऐसे नहीं सोचना चाहिए कि हम कोई गलत काम करें सोच समझकर, और फिर भक्ति साथ साथ करते रहें ये सोचकर कि चलो अभी हम साधु ही है ना, भगवान ने कहा है। नहीं, जो गलत काम ऐसे अनायास हो जाते हैं अकस्मात बिना सोचे हुए बस हो गया, तो बिना कोई योजना बनाए हुए, तो ऐसे अवस्थाओं की बात भगवान कृष्ण कर रहे हैं। ठीक है,
धन्यवाद महाराज।
हरे कृष्णा। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा क्या है ये? अच्छा तो कल से दो दिन का सत्र शुरू हो रहा है, सेमिनार है हिंदी में, श्री चैतन्य महाप्रभु की व्रज यात्रा, ये विषय होगा, और प्रवक्ता होंगे कृष्णानंद प्रभु। तो ये भी 4:30 to 6:30 शाम को यहीं पे होगा। ठीक है, हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा।
हरे कृष्णा। एक विशेष सूचना आप सुनिए, महाराज जी का ये सेमिनार पर आधारित जो सीडी है आप लोग जिसको चाहिए तो आप माधव कृष्ण प्रभु और नटवर दास से संपर्क कर सकते हैं। कल शाम को ये सीडी जिस जिसको चाहिए, ये सेमिनार का पश्चात और सेमिनार से पहले आप लोग को ये बलराम हॉल का बाहर में प्राप्त करें, यदि लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। ये बलराम हॉल के बाहर कल सेमिनार जो होगी उससे पहले, नहीं तो उसके बाद।